ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवा स्पेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 अप्रैल 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून कुफारे का अकीदा। सुनहरी मतन तबारीख। चूंकि तेरा दिल मोम हो गया और तूने खुदा के हजूर आजजी की, जब तूने उसकी वो बातें सुनी जो उसने इस मुकाम और इसके बाशिंदों के खिलाफ कही हैं, और अपने आप को मेरे हजूर खाकसार बनाया और अपने कपड़े फाड़कर मेरे आगे रोया, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है, खुदावंद फरमाता है। जवाबी मतालिया अयूब। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसकी ज़ुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख। अगर तू कादर मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। तब कादर मुतलिक तेरा ख़जाना और तेरे लिए बेश कीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपने मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और वो तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। दरसीवाज बाइबल में से तवारीख। अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसको ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। जबूर। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूँ, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊँगा। मीका। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। जबूर। शरीर अपने तकबर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं, उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। वो अपने दिल में कहता है मैं जुम्बश नहीं खाने का, पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। जबूर। अब ऐ खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो। याकूब। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फिसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। खुदा के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। मरकस। यीशु मसीह इब्न खुदा की खुशखबरी का शुरू। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। लूका। फिर उसने बाज़ लोगों से, जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमी को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने लगे, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में दो बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया यकीन देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यूहन्ना। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। अब मैं मीर बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मसीह एक नाकाबिले तस्खीर इंसान पेश करता है जिसे रूह खलक करती बनाती और हुकूमत करती है। उस खुदा यानी उसके इलाही असूल के साथ इंसान की शराकत को मसीह बयान करता है जो इंसान को पूरी दुनिया पर इख्तियार देता है। इंसान खुदा कभी नहीं होता बल्कि रूहानी इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया और वो खुदा को मुनक्स करता है। साइंसी अक्स में अना और बाप गैर मुनफिक हैं। मैं या अना इलाही असूल रूह जान गैर मादी गैर मंतकी लाफानी और अब्दी अकल। यहाँ सिर्फ एक मैं या हम है, सिर्फ एक इलाही असूल या अकल है जो सब वजूद रखने वाले मर्द और औरतों पर हुक्मरानी करता है, जो अपने इनफरादी किरदार में हमेशा से जूं के तू रहते हैं। ताहम वो सिर्फ एक असूल के मातहत होते हैं। खुदा की तख्लीक की तमाम तर चीज़ें एक अकल की अकासी करती हैं और जो कोई उस एक अकल की अकासी नहीं करता वो झूठा और गलत है। हत्ता कि ये अकीदा भी कि जिंदगी मवाद और जहानत मादी और जहनी दोनों है। एक खुदी एक अकल या रूह जिसे खुदा कहा जाता है लामुतनाही इनफरादियत है जो सब रूप और खूबसूरती दस्तियाब करता है और जो इनफरादी रूहानी इंसान और चीज़ों में हकीकत और अलूहियत की अकासी करता है। फ़ानी वजूदियत एक ख्वाब है। फ़ानी वजूदियत की कोई हकीकी हस्ती नहीं है बल्कि ये कहा जाता है ये अना है। रूह एक खुदी है जो ख्वाब कभी नहीं देखती बल्कि सब बातों को समझती है, जो कभी गलती नहीं करती और हमेशा बेदार रहती है, जो कभी ईमान नहीं रखती बल्कि जानती है, जो कभी पैदा नहीं होती और ना मरती है। रूहानी इंसान इस खुदी की शबीह है। इंसान खुदा नहीं है बल्कि रोशनी की वो किरण है जो सूरज से निकलती है। इंसान यानी खुदा से निकला हुआ खुदा को मनक्स करता है। पानी का एक कतरा समंदर के साथ एक है, रोशनी की एक किरण सूरज के साथ एक है। इसी तरह खुदा और इंसान बाप और बेटा हस्ती में एक हैं। कलाम कहता है क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। ये अकीदा कि इंसान खुदा से अलग वजूद या अकल रखता है फना होने वाली एक गलती है। इसका सामना यसु ने इलाही साइंस के साथ किया और इसके अदम को साबित किया। मालिक के इस कॉल ने कि मैं और बाप एक हैं उसे रबियों के रवायती नज़रिए से मुनफरद बनाया। खुदा से मुतलक उसकी बेहतर समझ उनके लिए डांट टपट थी। वो सिर्फ एक अकल से वाकिफ था और किसी दूसरे पर उसने कोई दावा नहीं किया। वो जानता था कि अना अकल थी ना कि बदन था और ये कि मादा गुनाह और बदी अकल नहीं थे और इलाही साइंस का ये फहम उस पर ज़माने की फुटकार लाने का मौजब बना। लोगों के मुखालिफ और झूठे नज़रियात ने मसीह की खुदा के साथ फर्जंदगी को उनके फहम से छुपाए रखा। वो उसकी रूहानी वजूदियत का शऊर ना पा सके। उनके जिस्मानी जहन इसके साथ अदावत रखते थे। उनके ख्यालात खुदा के उस रूहानी नज़रिए की बजाय जिसे मसीह यसु ने पेश किया फ़ानी गलती से भरपूर थे। कहानत का तकबर इस दुनिया का शहजादा है। उसका मसीह में कुछ नहीं है। हलीमी और खैरात में इलाही इख्तियार है। हलीम नासरी ने इस मफरूजे को मुस्तरद कर दिया कि गुनाह बीमारी और मौत में कोई ताकत है। उसने उन्हें बेख्तियार साबित किया। इसे काहिनों के तकबर को हलीम बना देना चाहिए था जब उन्होंने मसीहत के इजहार को उनके मुर्दा ईमान और रसूमात के तासुर से आगे बढ़ते देखा। अंधापन और खुद का रास्तबाजी बदी के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। جب محصول لینے والے کی آہ محبت کے عظیم دل سے نکلی تو اس نے اس کی حلیم خواہش کو فتح کیا۔ یسوع ناصری نے انسان کی باپ کے ساتھ یگانگت کو بیان کیا اور اس کے لیے ہمارے اوپر اس کی لامتناہی عقیدت کا قرض ہے۔ اس کا مشن انفرادی اور اجتماعی دونوں تھا۔ اس نے زندگی کا مناسب کام سر انجام دیا، نہ صرف خود کے انصاف کے لیے بلکہ انسانوں پر رحم کے باعث، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ انہیں اپنا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ نہ تو ان کے لیے خود کچھ کرنے یا نہ ہی انہیں کسی ایک ذمہ داری سے آزاد کرنے کے لیے یہ کیا۔ یسوع نے دلیری سے حواس کے تسلیم شدہ ثبوت کے خلاف، منافقانہ عقائد اور مشکوں کے خلاف کام کیا، اور اس نے اپنی شفائیہ طاقت کی بدولت اپنے سبھی حریفوں کی تردید کی۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں بھی مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہگار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے تو کفارے میں خدا کے ساتھ یک جہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ استاد پر مکمل ایمان اور وہ سارا جذباتی پیار جو ہم اس پر نچھاور کر سکتے ہیں، صرف یہی ہمیں اس کی تقلید کرنے والے نہیں بنائیں گے۔ ہمیں جا کر اسی کی مانند کام کرنا چاہیے، وگرنہ ہم ان بڑی برکات کو فروغ نہیں دے رہے جو ہمارے مالک نے ہمیں عطا کرنے کے لیے کام کیا اور تکلیف اٹھائی۔ مسیح کی الوہیت کا اظہار یسوع کی انسانیت میں کیا گیا تھا۔ پینڈولم کی طرح گناہ اور معافی کی امید میں جھولتے ہوئے، خود پرستی اور نفرت پرستی کو متواتر تنزلی کا موجب بنتے ہوئے، ہماری اخلاقی ترقی دھیمی ہو جائے گی۔ مسیح کے مطالبے پر بیدار ہونے سے بشر مصائب کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ یہ کوششیں کامیابی کا سہرا پاتی ہیں۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں، یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں، اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی کوششیں خوف و ہراس کی مشکلات میں گھری ہیں اور آپ کو موجودہ کوئی اجر نہیں مل رہا، واپس غلطی پر مت جائیں اور نہ ہی اس دوڑ میں کاہل ہو جائیں۔ جب جنگ کا دھواں چھٹ جاتا ہے، آپ اس اچھائی کو جان جائیں گے جو آپ نے کی ہے، اور آپ کے حق کے مطابق آپ کو ملے گا۔ خدا ہمیں آزمائش سے نکالنے کے لیے جلد باز نہیں ہے، کیونکہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ کو آزمایا اور پاک کیا جائے۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے، تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو مضبوط رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یک جہتی میں حصہ لینا ہے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے، تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ مادی حصے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخر کار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔